वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
हम लोगों ने अर्जुन के सातवें प्रश्न के ऊपर में विचार किया और भगवान ने सातवें प्रश्न का भी उत्तर जो है खत्म कर दिया था। भगवान ने अर्जुन का प्रश्न ये था कि प्रयाण काले च कथम गेय असी नियत आत्मभी युक्त चित्त वाले, जब पुरुष इस शरीर को छोड़ते हैं तो वो कैसे भगवान को जान लेते हैं, क्या तरीका है जानने का। तो भगवान ने तीन चीजें बताई सातवें प्रश्न के उत्तर में। एक तो कहा कि अंत काले च माम एव स्मरण मुक्ता कलेवरम, कि मरण काल के समय जाने के समय अगर मेरा स्मरण करता हुआ अगर कोई प्राणी जाएगा तो मुझ तक पहुंच जाएगा। एक अनन्य चेता सततम यह माम स्मृति नित्य स, अनन्य चेता एक मन से जो है मेरा सतत निरंतर चिंतन करने वाला भी अंतकाल में अपने आप ही उसके मन में भगवान का ही चिंतन आएगा, वो भी मेरे पास पहुंच जाता है। और तीसरा बताया भक्ता लभ्य तो अनन्या, अनन्य भक्ति से सिंगल पॉइंटेड भक्ति से भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने सातवें प्रश्न के उत्तर में बताया कि अंत समय में कैसे जाना सकता है, बोले ये करो, ऐसे करने से आप जान सकते हो। अच्छा, भक्ति माने ज्ञान भी, ये भी आप जान के रखिएगा। भक्ति मतलब केवल वही भक्ति नहीं होता है कि अनन्य भक्ति, भक्ति मतलब ज्ञान के अंदर भी भक्ति है। आत्म विषय का चिंतन भी भगवान का ही चिंतन है, आत्म विषय का चिंतन भी भगवान का ही चिंतन है। और ज्ञानी भगवान को सबसे प्रिय है। भगवान ने कहा ज्ञानी मेरी आत्मा है, ज्ञानी सबसे प्रिय है। और ज्ञान से ही हमको पुरुष की प्राप्ति भी हो जाती है, भगवत प्राप्ति हो जाती है ज्ञान से। अब इस यहाँ पर चर्चा जो चल रही है वो जो है दो मार्ग की चल रहा है। जिन्होंने ओंकार में ब्रह्म बुद्धि संपादन की है, जिन्हें कालांतर में मुक्ति मिलने वाली है, जिन्होंने उपासना की, हमने ऑलरेडी ये देखी है, तीन किस्म की उपासना भगवान ने बताई है, राजयोग और उपासना, एक उपासना, उपासना नंबर दो राजयोग, भक्ति प्लस ओंकार का आलंबन दो, तीसरा भक्ति योग अनन्य भक्ति से, तीन उपासना बताई। और तीनों उपासक जो हैं वो ब्रह्म तक पहुंचते हैं, भगवान तक पहुंचते हैं, जिन्हें कालांतर में मुक्ति वाली मिलने वाली है। कालांतर में उनको यहां ज्ञान नहीं हुआ, मुक्ति कैसे होगी, केवल ज्ञान से, याद रखना बराबर, चाहे ज्ञान यहां लो चाहे वहां जाके लो। तो उनको कालांतर मुक्ति, कालांतर मुक्ति क्रम मुक्ति, क्रम मुक्ति। तथा जहां जिनका प्रकरण चल रहा है उन योगियों की ब्रह्म प्राप्ति के लिए आगे का मार्ग बताना चाहिए। भगवान कहते हैं कि ठीक है आपने ये किया, अर्जुन का ये प्रश्न नहीं था, अब आगे कैसे कहां जाएंगे, क्या क्या मार्ग है, ये अर्जुन का प्रश्न नहीं था। उसका अर्जुन का प्रश्न केवल था कि मृत्यु के बाद में हम कैसे उनको पा जाएंगे। तो भगवान कहते हैं हम दो मार्ग बताएंगे आपको, दो मार्ग की हम चर्चा करेंगे। अतः विवक्षित अर्थ को बतलाने के लिए ही यत्र काले इत्यादि अगले श्लोक कहे जाते हैं। यहाँ पुनरावर्ती मार्ग का वर्णन दूसरे मार्ग की स्तुति करने के लिए किया गया है, पूर्णावर्ती। तो एक मार्ग जो है वापस आने वाला है, जाके वापस आना पड़ता है, और दूसरा मार्ग जो है पुनरावृत्ति नहीं है, वहीं रह जाएंगे, वहीं से मुक्ति हो गई। तो भगवान जो है मुक्ति वाले मार्ग की स्तुति करने के लिए पुनरावृत्ति मार्ग की भी चर्चा करेंगे, ताकि हम सब ठीक से समझ सकें कि ये दो मार्ग क्या हैं। तो क्रम मुक्ति के मार्ग क्या हैं, तो भक्ति एवं उपासना द्वारा भगवान तक पहुंच जाते हैं, उनका क्या होता है। भगवान कहते हैं दो मार्ग हैं। क्या क्या मार्ग हैं? एक शुक्ल मार्ग है और एक कृष्ण मार्ग है, और इसके दो कई नाम आपको हमने आगे भी बताए हैं। इस मार्ग में कौन सा किस मार्ग में जाएगा, कौन निर्णय करेगा? भगवान निर्णय करेंगे। हमारा काम कर्म करने का है। हमने राजयोग किया, भक्ति की, ओंकार आलंबन लिया या अनन्य भक्ति की, इन सब का जो है कर्म का अधिकार हमारा है, मगर कर्मफल कौन देगा? भगवान देंगे। तो भगवान निश्चित करेंगे कि हम किस मार्ग से जाएंगे, किस मार्ग से जाएंगे, ये भगवान निश्चित करेंगे। अगर हमने कर्म किया, भक्ति उपासना वगैरह की, भक्ति उपासना मतलब एक दो तीन उपासना, तीन किस्म की उपासना हम लोगों ने जो विचार किया था, तीन किस्म की उपासना जो करने वाले हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो शुक्ल मार्ग से जाएंगे, शुक्ल मार्ग से जाएंगे। और दूसरे जो लोग हैं जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, जिनके साकाम कर्म हैं, उनकी इच्छा है कि हम स्वर्ग का भोग करें, या यहाँ पर इष्ट पूर्त कर्म किए हैं, इष्ट मतलब हमारी इच्छा के अनुसार हमको स्वर्ग जाना है, पूर्त कर्म मतलब हमने यहाँ पर जो है स्कूल खोल दिए, विद्यालय खोल दिए, या अनाथालय खोल दिया, या दूसरे किस्म के अस्पताल खोल दिए, आदि 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 जो है पूर्त कर्म उसको कहते हैं। तो ये क्या है? पुण्य कर्म है। तो पुण्य कर्म का भी फल क्या है? वो स्वर्ग है। अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस मार्ग से यत्र काले, जिस मार्ग से प्रयाता, प्रयाता मतलब जो शरीर छोड़ते हैं, कौन शरीर छोड़ते हैं? योगिनः, योगिनः, योगी किसको कहेंगे? योगी उसको कहेंगे जिसने शुक्ल मार्ग के लिए प्रयत्न किया, शुक्ल मार्ग मतलब उपासना नंबर एक दो तीन जिसने की, एवं जो इष्ट पूर्त कर्म करते हैं वो भी योगी हैं, वो भी योगी हैं। यहाँ पर शंकराचार्य जी कहते हैं योगी न, इस पद से कर्म करने वाले कर्मी लोग भी योगी कहे गए हैं, क्योंकि कर्म योगे न योगी नाम, इस विशेषण से कर्मी भी किसी गुण विशेष के योगी हैं। जो केवल कर्म करते हैं, हमने इष्ट कर्म किया, स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर्म किया, वो भी योगी है। जिसने पूर्त कर्म किए वो भी योगी है, पुण्य कर्म कर रहा है। तो भगवान कहते हैं अनावृत्तिम आवृत्तिम, दो मार्ग है, अनावृत्तिम, अनावृत्तिम जहां जाके वापस नहीं लौटना है, आवृत्तिम जहां जाके वापस लौटना है। इन दो मार्गों की चर्चा भगवान ने करने वाले हैं। तो ये श्लोक नंबर 23 में हम देखा। तो ये प्रयाता कौन है? तो प्रयाता दो किस्म के हो गए, प्रयाता दो किस्म के लोग हो गए। एक तो जो इष्ट पूर्त करने वाले हैं, इष्ट पूर्त करने वाले, इष्ट मतलब हमको स्वर्ग प्राप्ति चाहिए, हमने हवन वगैरह किया, विधि के अनुसार किया, हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और छीने पुण्य मर्त्यलोक के विसंति वापस आना है। पूर्त कर्म करने वाले, पूर्त कर्म मतलब आपने सामाजिक कर्म किया, आपने विद्यालय बनाए, अनाथालय बनाया, या धर्मशाला बनाई, आदि 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 जो भी कुछ आपने किया दूसरों के लिए किया, उसके लिए भी आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी। तो ये लोग ये भी एक प्रयाता हुए, ये भी एक प्रयाता हुए। और दूसरे प्रयाता कौन है? शरीर छोड़ने के पहले उन्होंने तीन किस्म की, एक भी तीनों से एक भी किसी की उपासना की, उपासना नंबर एक, उपासना नंबर दो और उपासना नंबर तीन, किसी एक की उपासना की। तो ये दोनों ही जाएंगे। तो इष्ट पूर्त करने वाले वो कृष्ण मार्ग से जाएंगे, और उपासना एक दो तीन करने वाले वो शुक्ल मार्ग से जाएंगे, वो शुक्ल मार्ग से जाएंगे। अब भगवान कहते हैं ये दोनों का मार्ग मैं बताने जा रहा हूं। तो एक मार्ग से जो है आपकी जानकारी के लिए भगवान बता रहे हैं कि एक पुनरावर्ती है, एक उत्तरायण मार्ग है, एक दक्षिणायन मार्ग है। आप उत्तरायण मार्ग से जाओगे तो वापस नहीं आओगे, आप दक्षिणायन मार्ग से जाओगे तो वापस आओगे। कौन लोग दक्षिणायन में जाते हैं वो भगवान ने बता दिया, इष्टपूर्त कर्म करने वाले जाते हैं, और जो उपासना एक दो तीन करेंगे वो शुक्ल मार्ग से जाएंगे, वो उत्तरायण मार्ग से जाएंगे। क्लैरिटी आ गई दोनों मार्ग की। अच्छा, अब पहले भगवान जो है बताएंगे अनावृत्त मार्ग। अनावृत्त मार्ग तो ये हमने पढ़ा था 24वां,
नहीं अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः,
अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः,
षण्मासा उत्तरायणम्,
षण्मासा उत्तरायणम्,
तत्र प्रयाता गच्छन्ति,
तत्र प्रयाता गच्छन्ति,
ब्रह्मविदो जनाः,
ब्रह्मविदो जनाः,
अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः, षण्मासा उत्तरायणम्, तत्र प्रयाता गच्छन्ति, ब्रह्मविदो जनाः।
पहले भगवान जो है शुक्ल मार्ग की अपुनरावृत्ति मार्ग की चर्चा करते हैं, जहां से जाकर वापस नहीं लौटना पड़ता है। तो ये मार्ग कौन सा है? तो भगवान कहते हैं अग्नि, अग्नि, ज्योति, ज्योति, अह दिन, शुक्ल, शुक्ल पक्ष, षण्मासा उत्तरायण, 6 महीने वाला उत्तरायण, तत्र प्रयाता, तत्र मतलब उस मार्ग से, ये मार्ग हैं, हैं? इस मार्ग के अंदर एक एक उसके देवता बैठे हुए हैं। तो अग्नि मार्ग में अग्नि अभिमानी देवता बैठा है एक, ज्योति में ज्योति अभिमानी देवता बैठा है, दिन का देवता है, शुक्ल पक्ष का देवता है, उत्तरायण का देवता है, तत्र, तत्र मतलब उस मार्ग से प्रयाता, प्रयाता मतलब जो मरने वाले हैं, जो शरीर छोड़ के जाते हैं, गच्छन्ति, गच्छन्ति वो प्राप्त करते हैं, किसको प्राप्त करते हैं? ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ब्रह्म लोक को पहुंच जाते हैं। शुक्ल मार्ग से जाने वाले ब्रह्म लोक को पहुंच जाते हैं। कौन है ये लोग? ब्रह्मविद, ब्रह्मविद सगुण उपासक, जिन्होंने उपासना की है। यहाँ ब्रह्मविद का मतलब ज्ञानी की बात नहीं हो रही है, यहाँ ब्रह्मविद का मतलब जो सगुण उपासक है, जिन्होंने उपासना नंबर 1, 2, 3 की हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो ब्रह्मलोक जाएंगे। जनाहा, ये उपासक, ये योगी जन जाते हैं। कई महात्मा कहते हैं कि ये ज्योति जो है अग्नि का विशेषण है, जैसे ज्योतिर्मयी अग्नि ही, ज्योतिर्मयी अग्नि। शंकराचार्य जी कहते हैं अग्नि का भी एक देवता अग्नि काल अभिमानी देवता है, है? और उसके बाद में ज्योति का भी अभिमानी देवता है। अच्छा, इन देवताओं का जो है एक क्षेत्र बना हुआ है, क्षेत्र मतलब उनका एरिया एक है। क्या एरिया है? तो इसका एरिया है कि सारा जगत और सारा समुद्र जो है इनके क्षेत्र में आता है। यहाँ जितने जीव हैं उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। हमको ये भी जानना होगा ना किसके ऊपर ये नियम लागू है। आप गीता पढ़ के यही नहीं सोचना केवल भारतवर्ष में लागू है, सारे जगत में विथ ऑल 7 ओशंस लेके जो है इस क्षेत्र के ऊपर में ऐसा चलता है। अहम इन दिवस अभिमानी देवता, शुक्ल मिस शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता, षण्मासा उत्तरायण में तो उत्तरायण अभिमानी देवता। उत्तरायण कब से शुरू होता है? अभी 14 जनवरी से शुरू हुआ, मकर संक्रांति से उत्तरायण शुरू हो गया। सूर्य की यात्रा दक्षिण से अब उत्तर की तरफ जाने लगी, उसको हम उत्तरायण कहते हैं। क्या स्पेशलिटी है? तो इसके अंदर इन सारे देवताओं में एक चीज कॉमन देखी जाएगी कि इन सब में प्रकाश है, इन सब में प्रकाश है। जैसे अग्नि में प्रकाश है, ज्योति में प्रकाश है, दिन में प्रकाश होता है, शुक्ल पक्ष में प्रकाश ज्यादा होता है, उससे ज्यादा षण्मासा उत्तरायण, उत्तरायण के अंदर आप देखेंगे आगे जाके आपका 16 घंटे का दिन हो जाता है, 8 घंटे से 16 घंटे हो जाता है, प्रकाश की लिमिट जो है बढ़ जाती है, दिन का समय जो है पूरा बढ़ जाता है, और एक दूसरे की तुलना में अधिक प्रकाशमान है। अग्नि से ज्योति ज्यादा प्रकाशमान, ज्योति से दिन ज्यादा प्रकाशमान, दिन से शुक्ल पक्ष, दिन जो है आपका 16 घंटे का, शुक्ल पक्ष 15 दिन का, उत्तरायण 6 महीने का, तो अधिक प्रकाशमान ये है। ब्रह्मविद, ब्रह्मविद मतलब यहाँ ज्ञानी नहीं, ज्ञानी नहीं, क्योंकि ज्ञानी के बारे में जो है दूसरी बात है। ज्ञानी के बारे में कहा गया है न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, उसके प्राण तो निकलते ही नहीं है, वो तो यहीं जीवन मुक्त हो गया, उसको यहीं ज्ञान मिल गया। जिसको यहीं ज्ञान मिल गया उसके फिर शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग की जर्नी नहीं होती है। फर्क समझ लो, जो ज्ञानी है उसके लिए शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग की नहीं है। जिसको ज्ञान हो गया उसको फिर से पुनरावृत्ति का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, और दूसरा उसको कृष्ण मार्ग में भी नहीं जाना, शुक्ल मार्ग में भी नहीं जाना है। क्यों? अरे वहां जाके ज्ञान क्या प्राप्त करना है, उसको तो यहां ज्ञान मिल गया, अब क्यों जाएगा उस शुक्ल मार्ग से, नहीं जाना है। इसलिए उपनिषद कहता है न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, उसकी गति अवगति कृष्ण मार्ग शुक्ल मार्ग उसको कुछ नहीं चाहिए, वो तो यही मुक्त हो गया। तो ब्रह्मविद का मतलब क्या हुआ, जिन्होंने कर्म एवं उपासना की है, जब वह शरीर छोड़ता है तो वह शुक्ल मार्ग से जाता है। तो शुक्ल मार्ग से जाता है मतलब क्या, पहले आपको जो है आपने मान लो उपासना 1, 2, 3 की, मगर मृत्यु हमारे हाथ में नहीं होती है। ये जरूरी नहीं है कि उपासना नंबर 1, 2, 3 करने वाला केवल दिन के टाइम में मरेगा, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है वो रात को मर जाए, हो सकता है ना। और जिसने उपासना नहीं की है वो दिन को मर सकता है, कोई पापी आदमी। देखो ये शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग जो हैं केवल भक्तों के लिए हैं, जो निषिद्ध कर्म करता है उसके लिए शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग नहीं है, सबके लिए ये दोनों मार्ग नहीं खुले हुए हैं। ठीक से समझ देना, सबके लिए नहीं है। अगर आपने उपासना नंबर 1, 2, 3 की है तो आप अधिकारी हैं शुक्ल मार्ग से जाने के लिए, आपने इष्टपूर्त कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, आप कृष्ण मार्ग से जाएंगे। अगर आपने निषिद्ध कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, तो क्या आपको शुक्ल मार्ग मिलेगा, नहीं मिलेगा। कृष्ण मार्ग मिलेगा, नहीं नहीं मिलेगा। कहां जाना होगा, नरक में जाना होगा। तो सारी जनता के लिए ये दोनों मार्ग नहीं है, केवल उन उपासकों के लिए है जिन्होंने सारे जीवन में ये उपासना की है, उन लोगों के लिए। क्लैरिटी पूरी होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपने उपासना 1, 2, 3 की, 1, 2, 3 मतलब कोई भी एक उसमें से, उपासना नंबर 1 और उपासना नंबर 2 और उपासना नंबर 3, जो कोई भी एक की, और आपकी मृत्यु हो गई रात को। हो सकता है दिन में हो गई तो ठीक है, रात को हो गई तो रात का जो देवता है, रात्रि का जो काल अभिमानी देवता है, रात्रि के मार्ग का जो देवता है, वो आपको अपने पास में रखेगा, अपने गेस्ट हाउस में। सवेरे का देवता जैसे आया ट्रांसफर कर देगा, ये आपका कैंडिडेट है, ले लीजिए इसको। आपको सवेरे के देवता को मिल गया, सवेरे के देवता वाला जो है फिर आपको ट्रांसफर करेगा किसके पास में, शुक्ल पक्ष के पास में। शुक्ल पक्ष समझ रहे हैं ना, शुक्ल पक्ष वाले को देगा। शुक्ल पक्ष वाला किसको देगा, उत्तरायण वाले काल देवता को देगा। फिर उत्तरायण वाला किसको देगा, वो सूर्य देवता को देगा। सूर्य देवता किसको देगा, तो कहते हैं कि लाइटनिंग का जो देवता है, बिजली का देवता है, वो उसको देगा। बिजली का देवता कहां देगा, ब्रह्मलोक में। मतलब हर जगह वहां पर आपको एक देवता मिलेंगे, हर जगह एक अच्छा रेस्ट हाउस है, रेस्ट हाउस है, आपका ट्रांसफर होता रहेगा। मान लो आप कृष्ण पक्ष की रात्रि में मर गए, आप उपासना नंबर 1, 2, 3 वाले हैं, कृष्ण पक्ष की रात्रि में मर गए, तो क्या होगा, वो अपने पास रखेगा 15 दिन आपको। फिर जैसे ही शुक्ल पक्ष का देवता का समय आएगा, दे देगा, ये आपका कैंडिडेट है भाई, इसको लेके जाओ। इस तरह से आपको आप पहुंच जाते हैं और वहां पर जाके फिर जो है ब्रह्मलोक में वहां के सबके पार्षद आते हैं। पार्षद मतलब उनके उनके एजेंट आते हैं, किनके? आप शिव भक्त हैं तो शिव लोक के आएंगे, वो भी खड़े रहेंगे। आप जो है विष्णु भक्त हैं, वैकुंठ के भी पार्षद होंगे हैं। आप राम भक्त हैं, साकेत के भी पार्षद होंगे। ये सारे ब्रह्मलोक में हैं। ब्रह्मलोक में राम जी का, कृष्ण का, शिव का डिफरेंट जो है एरिया बंधा हुआ है। आप किस गेस्ट हाउस में जाओगे? आप ऐसे सोचो कि आपको जैसे न्यू दिल्ली के अंदर डिफेंस कॉलोनी के अंदर जितने भी एम्बेसीज वहाँ हैं, मान लो डिफरेंट एम्बेसीज है, अमेरिका की है, यूके की है, इसकी उसकी उसकी है, आपको किस में जाना है? सर एक ही एरिया में जाना है। अब आपको वीसा के लिए यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है? तो वहाँ के पार्षद खड़े रहते, वो आपको ले जाएंगे। याने प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म, देखो वहां पर वर्ड आया ना प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म, सेकंड लाइन में आता है कि सारे के सारे प्रयाता जो शरीर छोड़ते हैं वो सारे के सारे ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं। चाहे आपका इष्ट देवता राम हो या कृष्ण हो या शिव हो या जो कुछ भी हो, आप वहां पहुंच गए। फिर उसके बाद में क्या होगा? तो एक चीज हमको समझ लेनी चाहिए कि अगर गलत समय पर भी शरीर छूटा तो हम सही जगह पहुंचेंगे, ये पहले समझ लेना चाहिए। गलत समय पर शरीर छूटा मतलब आप उपासक नंबर 1, 2, 3 हैं, मगर आपका शरीर छूटा रात्रि के समय कृष्ण पक्ष में या दक्षिणायन में, तो क्या होगा? मगर गंतव्य स्थल ब्रह्मलोक तक आप पहुंचेंगे। आपको वहां वेटिंग में रख देंगे वो लोग, अच्छी जगह 5-स्टार होटल में रखेंगे। जैसे ही उसका दूसरा अभिमानी देवता का टाइम आएगा उसको दे देंगे, आप आगे चलते जाओ। अच्छा, अब एक प्रश्न उठ सकता है कि भीष्म क्यों उत्तरायण का इंतजार किया जबकि उनको बाण जो है दक्षिणायन में लगे थे? आपको याद होगा जो सरसैया पर वो पड़े हुए थे भीष्म पितामह, उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्या कारण हो सकता है? तो महात्मा लोग कहते हैं एक कारण तो है लोक संग्रह के लिए, लोक संग्रह के मतलब के लिए विष्णु सहस्रनाम देने के लिए, लोगों को विष्णु सहस्रनाम दिया, युधिष्ठिर को जो है ज्ञान दिया, युधिष्ठिर को ज्ञान दिया। दूसरा जो है भगवान कृष्ण का दर्शन चाहते थे, भगवान कृष्ण का दर्शन जो है उत्तरायण में सहज होता है, शुक्ल मार्ग है, भगवान की प्राप्ति जो है शुक्ल मार्ग में होगी, उत्तरायण में होगी, इसलिए वेट किया। और तीसरा इच्छा मृत्यु का जो उनका वरदान था उसको भी उनको देखना था, टेस्ट करना था, दक्षिणायन में मेरी मृत्यु हुई है, मेरी इच्छा मृत्यु ठीक है कि नहीं, मैं देखूं जो हमको जो है वर मिला था, जो वरदान मिला था वो ठीक है भी कि नहीं, तो वो भी ठीक निकला। तो इस कारण जो है वो दक्षिणायन के लिए उत्तरायण के लिए वेट करते थे। अब जो है भगवान चर्चा करेंगे कृष्ण मार्ग की। तो यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं यहां अग्नि काल अभिमानी देवता वाचक है तथा ज्योति भी काल अभिमानी देवता का ही वाचक है। वेद में हमको ऐसे मिलते हैं, ज्योति के देवता अलग हैं, अग्नि के देवता अलग हैं, अथवा अग्नि और ज्योति नाम वाले दोनों प्रसिद्ध वैदिक देवता भी हैं, ये वैदिक देवता हैं। उसके बाद शंकराचार्य जी कहते हैं कि अभिप्राय यह है कि जिस मार्ग से अग्नि देवता, ज्योति देवता, दिन का देवता, शुक्ल पक्ष का देवता और उत्तरायण के 6 महीनों का देवता इस मार्ग में मर कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता यानी ब्रह्म की उपासना में तत्पर हुए पुरुष क्रम से ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। एक चीज निश्चित है, उपासना नंबर 1, 2, 3 करो, आप ब्रह्मलोक पहुंच जाओगे। यहां उत्तरायण मार्ग भी देवता का ही वाचक है क्योंकि अन्यत्र ब्रह्म सूत्र में भी यही न्याय माना गया है। अब शंकराचार्य जी थोड़ा सा एडिशनल एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये किसको लागू नहीं है। कहते हैं जो पूर्ण ज्ञान निष्ठ सद्यो मुक्ति के पात्र होते हैं। सद्यो मुक्ति इंस्टेंट मुक्ति, कहां मुक्ति मिली? इस पृथ्वी पर मिली। उनका आना जाना कहीं नहीं होता। अगर आप यहीं पर ज्ञान प्राप्त कर लो तो फिर आपके लिए शुक्ल मार्ग कृष्ण मार्ग में जाना नहीं है, श्रुति भी कहती है उसके प्राण निकल कर कहीं नहीं जाते, वे तो ब्रह्म संलीन प्राण अर्थात ब्रह्ममय ब्रह्म रूप ही हैं, ऐसा शंकराचार्य जी भी कहते हैं। अब दूसरा मार्ग देखें, शुक्ल मार्ग के लिए अब आपका हो गया एकदम क्लियर। शुक्ल मार्ग क्या है, किसके लिए है? उपासना नंबर 1, 2, 3 वालों के लिए है। अच्छा, दूसरा आप कृष्ण मार्ग।
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः,
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः,
षण्मासा दक्षिणायनम्,
षण्मासा दक्षिणायनम्,
तत्र चांद्रमसं ज्योतिः,
तत्र चांद्रमसं ज्योतिः,
योगी प्राप्य निवर्तते,
योगी प्राप्य निवर्तते,
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः, षण्मासा दक्षिणायनम्, तत्र चांद्रमसं ज्योतिः, योगी प्राप्य निवर्तते।
यहाँ कृष्ण मार्ग के अंदर देखो अब क्या है, धूम है, धूम मतलब धुआं, धुआं अंधकार है, रात्रि अंधकार है, कृष्ण कृष्ण पक्ष में भी जो है लाइट कम होती है, षण्मासा दक्षिणायनम, षण्मासा दक्षिणायन में भी जो है लाइट कम होती है, तत्र चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते, ऐसे लोग जो है दक्षिणायन वाले अभिमानी देवता के पास में जाते हैं और वहां पर चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर यानी स्वर को प्राप्त होकर फिर से निवर्तते वापस आते हैं, वापस आ जाते हैं। देखो हमें क्या समझना चाहिए कि जीवन में जब प्रकाश की न्यूनता हो, जीवन में जब प्रकाश की न्यूनता हो, केवल सत्कर्म किया हमने, केवल पुण्य कर्म किए, इष्ट कर्म किए, पूर्त कर्म किए, उपासना 1, 2, 3 नहीं की, तो कर्म जो होते हैं वो कर्म कभी भी निर्दोष नहीं होते हैं, हर कर्म में कुछ ना कुछ दोष रह जाता है, कर्म कभी निर्दोष नहीं होता है। फिर चंद्र में प्रकाश कम है, कम प्रकाश में किताब नहीं पढ़ सकते, अब चंद्रमा के प्रकाश में क्या आपके उपन्यास पढ़ सकते हो बाहर में बैठ के? नहीं, प्रकाश कम है, तो वो उस मार्ग से जाते हैं जिसमें प्रकाश कम है, और जब ज्ञान का प्रकाश नहीं तो लौटना पड़ेगा। जब ज्ञान का देखो, ज्ञान और प्रकाश को हम लोग कंपेयर करते हैं, ज्ञान जो है प्रकाश से कंपेयर होता है, जब आपके भीतर में ज्ञान का प्रकाश नहीं है तो आपको तो लौटना पड़ेगा, आपको वापस तो आना ही पड़ेगा। तो सत्कर्म केवल क्या है, पूजा पाठ किया, पूजा पाठ किया, मगर ब्रह्म विद्या का अभाव है। पूजा पाठ करते हैं, बहुत लोग करते हैं, अब इस ज्ञान के बाद ने, इसको जानने के बाद ने, अब आँख खोल के आप समाज में देखेंगे तो लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं, मगर ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या का अभाव मतलब सूर्य के प्रकाश का अभाव। देखो समझ में आ रहा है आपको, ब्रह्म विद्या का अभाव, केवल पूजा पाठ ही करते जा रहे हैं, ब्रह्म विद्या के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, उसका मतलब सूर्य का अभाव, सूर्य का अभाव। तो जो साकाम योगी है कृष्ण मार्ग से होते हुए स्वर्ग पहुंचते हैं, जहां उन्हें चंद्रमा की तरह शीतल किरणें हैं, उनका भोग कर पुण्य खत्म होने पर वापस आते हैं, निवर्तते, वापस आना है। अब आपको क्लियर तो हो गया ना, एक मार्ग से जाने से आपको वापस नहीं आना है, और दूसरे मार्ग से कृष्ण मार्ग से जाने से वापस आना है। अगर आपको ये 2 चॉइस देंगे तो कौन सी चॉइस लेंगे आप, शुक्ल मार्ग या कृष्ण मार्ग? अगर आपको ये जीवन अच्छा लगता है तो आप कृष्ण मार्ग लीजिएगा, वापस आना है यहाँ पर, अभी भी हमको हमारा जो है आई एंजॉय सोरोज, कई लोग होते हैं ना दुख को एंजॉय करते हैं, आपको अगर ये अच्छा लगता है तो आप कृष्ण मार्ग ले लेना। तो कृष्ण मार्ग के लिए क्या करना होगा, इष्ट पूर्त कर्म करने होंगे, इष्ट पूर्त कर्म, इष्ट कर्म मतलब मेरी की ये कामना है, मेरे को सुख भोगना है, स्वर्ग का सुख चाहिए, यहाँ का जीवन देख लिया, लोग कहते हैं कि वहाँ के सुख का जो है क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत डिफरेंट है, वहाँ लोग बुढ़े ही नहीं होते हैं, सब आदमी 16 वर्ष के, अस्पताल है ही नहीं वहाँ पर, तो क्यों ना वहाँ जाए, तो ऐसा सोचते हैं लोग। अच्छा, तो योगी सकाम वाले कैसे वापस आते हैं कृष्ण मार्गी, ये आपको नहीं मालूम है, हम आपको बता देते हैं वापस कैसे आते हैं, वापस आने का क्या मार्ग है, क्या उसी मार्ग से वापस आते हैं, सब देवता की आपको रिसीव करेंगे, कृष्ण मार्ग से जाने वाले जो वापस आते हैं उनको फिर क्या होता है, तो कहते हैं कि वो पहले आकाश में आते हैं, आकाश में आके वायु, वायु से फिर वृष्टि पानी में आते हैं, बरसात में आते हैं, बरसात से फिर वो अन्न होता है, अन्न से जो है वो जो पुरुष जो है वो खाता है, फिर वो वीर्य बनता है, फिर वीर्य के बाद में मातृ के गर्भ में फिर आता है। देखो ये तरीका आने का, स्वर्ग से छूटा आकाश में आ गया, आकाश से वायु, वायु के बाद वर्षा, बरसात, बरसात के बाद धरती पर अन्न में आया। जीव की चर्चा हो रही है, जीव की चर्चा, वो कहाँ, अन्न में आया, अन्न किसने खाया, पुरुष ने खाया, पुरुष से खा के फिर क्या हुआ, वीर्य बना, वीर्य फिर स्थापित हुआ मातृ के घर में, वहाँ जाके फिर जीव से फिर जन्म लेता है। अच्छा, मुंडक उपनिषद में ऐसा कहा गया है कि स्वर्ग से पर्जन्य मतलब रेन, बारिश, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद पुरुष, और उसके बाद योषितायाम, योषितायाम मातृ के घर में आ जाता है। तो यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं जिस मार्ग में धूम और रात्रि है अर्थात धुवा विमानी और रात्रि विमानी देवता हैं तथा कृष्ण पक्ष अर्थात कृष्ण पक्ष का देवता है एवं दक्षिणायन के 6 महीने में अर्थात पूर्व दक्षिणायन मार्ग अभिमानी देवता है, उस मार्ग में गया हुआ योगी अर्थात ईष्ट पूर्त आदि कर्म करने वाला कर्मी, ईष्ट पूर्त आपको अब समझ में आना चाहिए, ईष्ट पूर्त, ईष्ट मतलब सकाम कर्म, पूर्त मतलब हमने समाज के लिए कुछ किया, पुण्य कर्म किए, पूर्त कर्मी चंद्रमा की ज्योति को अर्थात कर्म फल को प्राप्त होकर भोग कर उस कर्म फल का क्षय होने पर लौट आता है, सिंपल मीनिंग ये हो गया। अच्छा, अब भगवान कहते हैं छब्बीसवां श्लोक,
शुक्ल कृष्णे गति एते,
शुक्ल कृष्णे गति एते
जगत शाश्वते मते,
जगत शाश्वते मते
एकया यातना वृत्तिम,
एकया यातना वृत्तिम
अन्नया वर्तते पुनः,
अन्नया वर्तते पुनः
शुक्ल कृष्णे गति एते जगत शाश्वते मते एकया यातना वृत्तिम अन्नया वर्तते पुनः।
भगवान कहते हैं देखो यही दो मार्ग हैं, एक हमने जो बताया शुक्ल मार्ग और एक कृष्ण मार्ग, और ये मार्ग जो है उपनिषद में भी आते हैं और ये प्रसिद्ध भी हैं, जगत शाश्वते मते, ये जो है जगत में शाश्वत हैं, लोग जानते हैं, एक या याति अनावृत्ति मान्यता आवर्तित है पुनः, एक में जाकर लौटना नहीं पड़ता है और दूसरे में जाकर लौटना पड़ता है। अच्छा, तो ये कहाँ आया है, तो छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में इन गति की चर्चा है, उपनिषद में भी इन गति की चर्चा है। तो शुक्ल मार्ग क्या है, अनावृत्ति मार्ग है, वापस नहीं आना है। कृष्ण मार्ग क्या है, आवृत्ति है, पुनरावृत्ति है, वापस आना है। तो क्यों इसे शुक्ल व कृष्ण मार्ग कहते हैं, इसको शुक्ल मार्ग इसलिए कहते हैं कि उत्तरोत्तर प्रकाश बढ़ता जाता है शुक्ल मार्ग में, और कृष्ण मार्ग में उत्तरोत्तर प्रकाश कमती होता जाता है, है? दक्षिणायन में प्रकाश कम होता है, उत्तरायण में प्रकाश ज्यादा होता है। शुक्ल मार्ग में क्रम मुक्ति है, ज्ञान की व्यवस्था है, वापस नहीं आना है ज्ञान के पश्चात, और कृष्ण मार्ग में ज्ञान की व्यवस्था नहीं है, ज्ञान की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वापस आना है। स्वर्ग में ज्ञान की व्यवस्था नहीं है। आपको मैंने आगे भी कहा है कि दो जगह ज्ञान की व्यवस्था है, एक तो इस मर्त्यलोक में है और दूसरा ब्रह्मलोक में है। तो स्वर्ग में जाएंगे वहां ज्ञान नहीं है, वापस आना है। तो ज्ञान का अभाव अंधकार है और ज्ञान जो है प्रकाश है। यह दोनों मार्ग सदा उपलब्ध हैं, शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग में। कौन सा बेटर हुआ? शुक्ल मार्ग बेटर हुआ, मगर सबको उपलब्ध नहीं है। आप ये नहीं समझ लेना हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो गया। उपासना नंबर 1, 2, 3 वाले के लिए शुक्ल मार्ग, इष्ट पूर्त कर्म करने वाले के लिए कृष्ण मार्ग, निषिद्ध कर्म करने वाले के लिए ये मार्ग नहीं है, उसके लिए दूसरा मार्ग है। उसके लिए दूसरा मार्ग है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो है दो मार्ग हैं, शुक्ल और कृष्ण। ये दो मार्ग अर्थात जिसमें ज्ञान का प्रकाश है वह शुक्ल है और जिसमें इसका अभाव है वह कृष्ण है। ऐसे ये दोनों मार्ग जगत के लिए नित्य सदा से माने गए हैं, क्योंकि जगत नित्य है। यहाँ जगत शब्द से जो ज्ञानी और कर्मी उपयुक्त गति अधिकारी हैं उन्हीं को समझना चाहिए, क्योंकि सारे संसार के लिए गति संभव नहीं है, सबके लिए नहीं है। ये आप अगर अधिकारी हो तो आप जाओगे शुक्ल मार्ग से कृष्ण मार्ग से। आप नोट करके रख लेना है शुक्ल मार्ग में जाने वाले कौन व्यक्ति हैं, कृष्ण मार्ग में जाने वाले कौन व्यक्ति हैं, नहीं तो भूल जाओगे अगले हफ्ते तक तो निश्चित भूल जाओगे, कल सवेरे भी भूल सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट।
नैते श्रुति पार्थ जानन, नैते श्रुति पार्थ जानन, योगी मुह्यति कश्चन, योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, योगयुक्तो भवार्जुन, योगयुक्तो भवार्जुन, नैते श्रुति पार्थ जनान, योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, योगयुक्तो भवार्जुन।
न एते श्रुति पार्थ, श्रुति मतलब मार्ग, ओ पार्थ जो इन दो मार्गों को जो जानता है, शुक्ल मार्ग को जो जानता है, कृष्ण मार्ग को जो जानता है, ऐसा योगी न मुह्यति, फिर वो विचलित नहीं होता है, कोई मोगी मोहित नहीं होता है, उसको कोई गलतफहमी नहीं होती है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन। जब आपको इसके बारे में आपको ठीक ठीक आपको पता लग गया कि कृष्ण मार्ग के अधिकारी कौन हैं, शुक्ल मार्ग के अधिकारी कौन हैं, भगवान कहते हैं जब तुमको दोनों चीज का पता लग गया तो आपको क्या करना चाहिए, आपको चूज करना चाहिए शुक्ल मार्ग, जिससे वापस नहीं आना पड़ता है। तो शुक्ल मार्ग के लिए क्या करना है, तो बोलते हैं योग युक्त, आपको योग युक्त होना होगा, योग युक्त हो जाओ। ओ पार्थ सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन, तो उसकी प्राप्ति के लिए आप योग युक्त हो जाओ। देखो हमको क्या जानना है, हमको ये जानना है कि शुक्ल मार्ग से जाने से मुक्ति होती है और कृष्ण मार्ग से जाने से बंधन होता है। बंधन मतलब वापस आ गए फिर। अब कितनी बार आप स्वर्ग जाओगे आओगे, स्वर्ग जाओगे आओगे, आप स्वर्ग की लिए पंडित को बुलाया, यज्ञ करवाया, बहुत कुछ किया, खर्च किया, ये किया, गए उसके बाद वापस आ गए, तो ये बंधन हुआ ना, फिर से वापस आ गए, मुक्ति कहाँ हुई। तो हमको ये जानना है कि शुक्ल मार्ग के अंदर मुक्ति है और कृष्ण मार्ग के अंदर बंधन है। न योगी मोहिति कश्चन, है कोई भी साधक उसके बाद मोहित नहीं होगा। जिसको ठीक से जानकारी हो जाए कि वो इष्ट पूर्त कर्म नहीं करेगा। शास्त्र कहते हैं इष्ट पूर्त कर्म करो। देखो विकास की एक विधि है, जो बहुत पापी होता है उसके लिए साधना होती है तुम पुण्य शुरू करो। पुण्य शुरू करो ताकि पाप की गठरी कमती हो जाए, पुण्य आस्ते 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 तुम्हारा बढ़ेगा, तुमको शांति मिलेगी। पाप से बराबर दुख मिलता रहेगा, पुण्य से थोड़ा थोड़ा सुख मिलेगा, आस्ते आस्ते सुख बढ़ता है। मगर केवल पुण्य करने से पुण्य भी बंधन है, ये जानना होगा। पुण्य बंधन क्यों है? पुण्य के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा, पाप के लिए अधो योनि में, पुण्य के लिए ऊपर की योनि में जाना है। मगर पुण्य खत्म हुआ फिर वापस आ जाओ, तो पुण्य भी एक बंधन है, ये आपको जानना है। तस्मात सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन, हे अर्जुन सब समय योग युक्त रहो, यानी भगवान पर ध्यान रहे, भक्त बनो, शुक्ल गति मिलेगी। योग युक्त रहो बराबर भगवान का चिंतन करो। अर्जुन कौन है? अर्जुन माने जिसका मन शुद्ध है, जिसका मन शुद्ध है उसको अर्जुन कहते हैं। अर्जुन माने शुक्ल भी, शुक्ल भी मतलब ज्ञान से प्रकाशित है, अंधियारा नहीं है उसका, उसका उसकी बुद्धि जो है वो प्रकाशित है, उसमें काफी प्रकाश है। अर्जुन तुम्हारा मन शुद्ध है, तुम्हारे लिए शुक्ल मार्ग कठिन नहीं है, भगवान ये कहना चाहते हैं। हमें क्या करना होगा योग युक्त होने के लिए? सातवें प्रश्न का उत्तर आज हमने शुरू किया था, अंत समय में जानने के लिए क्या करना होगा? तीन चीजें आपको बताई, अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, दूसरा अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसर, और तीसरा भक्त्या लभ्यतु अनन्या। ये हमको योग युक्त अगर होना है, योग युक्त किस लिए होना है? योग युक्त किस मार्ग के जाने के लिए? शुक्ल मार्ग के लिए। भगवान चाहते हैं कि हम लोग सब शुक्ल मार्ग से चलें। मगर यहीं अगर ब्रह्म ज्ञान मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। नौवें अध्याय में भगवान बताएंगे, बताएंगे। अच्छा, अब 28वां श्लोक हम देखेंगे जो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है।
वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम्, दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम्, अत्तेति तत् सर्वमिदं विदित्वा, अत्तेति सर्वमिदं विदित्वा, योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्, योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम्, अत्तेति तत् सर्वमिदं विदित्वा, योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्।
अब इस योग का महात्म्य बताते हैं, योग युक्त वाला जो मार्ग शुक्ल मार्ग का है ना, उसकी महिमा बताते हैं, इसका महात्म्य क्या है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम्। प्रदिष्टम मतलब कहा गया है, क्या कहा गया है कि वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु दानेषु, इन सब का जो पुण्य फल कहा गया है वो भगवान बताने जा रहे हैं कि क्या है पुण्य फल, और शुक्ल मार्ग से जाने वाले का फल क्या होता है। तो वेदेषु का मतलब क्या है? जो वेद का अध्ययन सम्यक रूप से करता है, केवल अध्ययन किया उसने, जिसको आप कहते हैं चैंटिंग, चैंटिंग किया, उससे सुपीरियर कौन है? अर्थज्ञ, जो उसके अर्थ को जानता है। और हम लोग भागवत में कपिल भगवान के उपदेश में सुन रहे थे कि उससे भी अर्थ से जानने वाला भी बेटर कौन है? जो दूसरे के संशय को हटाता है, दूसरे के संशय को हटाता है, वो उससे बेटर है। उससे भी बेटर एक भगवान ने कहा कि जो अपने कर्तव्य कर्म मेरे लिए करता है, वो सबसे सुपीरियर है। तो यहां जो वेद का मतलब, जो वेद का अध्ययन करता है उसको अर्थ के बारे में नहीं मालूम है। यज्ञेषु, जो यज्ञ ठीक समय पर एवं ठीक स्थान पर किया गया है, सद्गुण्य अनुष्ठिताम, विधि विधान से ठीक समय पर, यज्ञ का समय होता है, इस समय अच्छा समय है, इस दिन कीजिए, ऐसा है। तपसु, व्रत, जिसने चंद्रायन व्रत आदि के नियम, जो भी व्रत का जो नियम है नियम से व्रत वगैरह किए, दानेशु ठीक व्यक्ति को सही समय पर उसने दान दिया। दान भी जो है देश काल पात्र देख के देना चाहिए, देश काल पात्र देख के दान देना चाहिए। तो इन सब का फल क्या है? इन सब का फल है स्वर्ग प्राप्ति। इतने सब कुछ करने का फल केवल है स्वर्ग प्राप्ति। अतेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान उपैति चाद्यम। इन सबको निसंदेह उल्लंघन करता हुआ अतेति और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। कौन? ये योगी। कौन सा योगी? योग युक्त योगी। याद है जो उपासना नंबर 1, 2, 3 जिसने की, ये बड़ा साइंटिफिक है, एकदम भगवान एक एक करके बता रहे हैं कि योग युक्त होने से तुमको क्या फल मिलेगा। बोले इन सबसे ज्यादा मिलेगा, इन सबसे ज्यादा मिलेगा। तत्सर्वम, इन सबसे जो कुछ मिलने वाला है, इदम वितित्वा, अगर इस अध्याय में कहे हुए मेरे तात्पर्य यानी सातवें प्रश्न का उत्तर में भगवान को अंतकाल में कैसे स्मरण करें, योग युक्त कैसे हो, फिर मैंने आपको बताया, आगे भी तीन चीजें बताई, फिर आपको तीन चीजें भी बताई। योगी अत्यति, योगी मतलब यज्ञ दान तप आदि से पाने वाले फल से कहीं अधिक फल, बहुत ज्यादा फल पाता है, यानी भगवत प्राप्ति होती है। वह कर्म उपासना से ब्रह्म लोक में जाकर वहां जाकर ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। और ये इष्टपूर्त कर्म से बेहतर है, क्योंकि इष्टपूर्त कर्म करने वाले को वापस आना है, वापस आना है। कृष्ण मार्ग से जाने वाले को वापस आना है, शुक्ल मार्ग से जाने वाले को क्रम मुक्ति मिलती है, वहां जाके ज्ञान प्राप्त किया और मुक्त हो गया। परम स्थानम उपैति, ज्ञान के बाद उसे परम धाम मिल जाता है। भगवत गीता में आया ना, तद धाम परम मम, यानी भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो वो स्थान कैसा है? आद्यम। आद्यम मतलब यह जो है जगत का कारण है, वो स्थान जो है, वो ब्रह्म जो है, वो ब्रह्म जो है ज्ञान के प्राप्त आपको क्या मिले। अच्छा, ज्ञान क्या है ब्रह्म लोक में? ज्ञान है तत्त्वमसि, आप ब्राह्मण हो, यही यहां वहां बताएंगे। आपने यहां सुना तत्त्वमसि वाक्य कभी? नया है क्या आपके लिए? ना, ये वहां भी बताएंगे। तो ये ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ज्ञान के प्राप्त में वो जगत का कारण है। कौन कारण है? ब्रह्म जगत का कारण है। सदैव अग्रम आसीत, छांदों के उपनिषद का वही जो सबसे आगे था उस जगह पर आप पहुंच गए। तो इस अध्याय का नाम क्या हुआ? अक्षर ब्रह्म योग। शुक्ल मार्ग से जाइए, ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, निर्गुण ब्रह्म बन गया। हम दोनों मार्ग उत्तरायण दक्षिणायन से वैराग्य होना चाहिए, हमारा गोल मोक्ष। यहां हमें क्या करना चाहिए? अब हम इस अध्याय के आगे चलते हैं। एक तीसरा मार्ग अवेलेबल है, यहीं पर मुक्ति का मार्ग, जिसको 9वें अध्याय में भगवान कहेंगे। वो शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग से भी बेहतर है। क्यों शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग से बेहतर है? कृष्ण मार्ग वाला तो वापस आता है, शुक्ल मार्ग क्रम मुक्ति, कितने दिन के बाद मुक्ति मिलेगी पता नहीं। अभी अगर यही मुक्ति मिल जाए, जिसको सद्यो मुक्ति कहते हैं, यहां पर हम क्रम मुक्ति की चर्चा कर रहे हैं। सद्यो मुक्ति की चर्चा 9वें अध्याय में आएगी। तो क्रम मुक्ति के लिए भी हमें क्या चेष्टा करनी चाहिए? नहीं, हमें सद्यो मुक्ति के लिए चेष्टा करनी चाहिए, यहीं मुक्त हो जाएं। क्या करना होगा? जो भगवान अर्जुन से करवाए हैं, जो ज्ञान दिया है, वैसे ही करना होगा, कर्मयोग करना होगा। तो यज्ञ दान वेद अध्ययन और तब से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। योग युक्त उपासना 1, 2, 3 करो, और वो जो हमने 3 अभी बताए भक्ति के लिए, वो करने से मिल जाएगा। देखो, उपासना नंबर 1, 2 से उपासना नंबर 3 बेटर है, उपासना नंबर एक में जो है राजयोग है, वो क्रिया योग है, उसके अंदर प्राण को जो है आपको नाभि से ऊपर लाके यहाँ ब्रह्मरंध्र तक लाना है, फिर यहाँ से प्राण छोड़ना है, वो बहुत झंझट वाला काम है। उपासना नंबर दो भी वैसा ही है, उसमें भी राजयोग है। सहज उपासना नंबर थ्री है भक्ति। भक्ति के अंदर आपको हम तीन चीजें बता दी क्या क्या करने को भगवान ने कहा, अनन्य चेता भक्ति से हमको मिल जाएगा, अनन्य भक्ति करना है, नित्य स्मरण करो, अंतकाल में मेरा याद रखो, तो उससे मिल जाएंगे हम। तो एक तो ये तरीका योग युक्त, दूसरा भगवान कहते हैं इतना तुम करके जो है परेशान क्यों होते हो। सातवें अध्याय के अंदर में 23वें श्लोक के अंदर भगवान कहते हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम तत् भवति अल्पमेधसाम देवान देम यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। आप इतना चेष्टा करके, इष्ट पूर्ति इतना हवन करके, इतने अनाथालय खोल के, अस्पताल खोल के, पुस्तकालय खोल के, देवालय खोल के आप जो है स्वर्ग गए। स्वर्ग जाके वापस आ गए। भगवान कहते किसी और देवता की पूजा करोगे उस देवता को प्राप्त कर लोगे। अरे उतनी मेहनत है, मेरी पूजा कर लो, मेरे को प्राप्त कर लो। तो बोलते जो दूसरे काम कर रहे हैं अल्प मेधसा, उनकी बुद्धि छोटी है। जितना प्रयत्न करने के लिए आप स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हो, अरे भगवान कहते हैं मेरे लिए उतना कर लो, मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है कि नहीं? अब आपको विचार करना है कौन सा हमको करना है, हमको कृष्ण मार्ग से जाना है कि शुक्ल मार्ग से जाना है, और इन दोनों मार्ग को हम छोड़ देते हैं तो क्या करें फिर? तो बोले वेद अध्ययन करो, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, सब मेरे लिए करो। अभी आप कर रहे हो किसके लिए? अपने लिए। क्यों अपने लिए? स्वर्ग जाना है। समझो, ठीक से समझ लो। अभी हम दान तप यज्ञ व्रत क्यों कर रहे हैं? कि हमको स्वर्ग जाना है। भगवान कहते हैं वही यज्ञ दान तप जो है मेरे लिए करो तुम। इससे क्या होगा? बोले डबल फायदा होगा। कैसे डबल फायदा? एक तो जो है कर्म फल ज्यादा मिलेगा, स्वर्ग से ज्यादा चीज मिलेगी हमें। दूसरा मन की शुद्धि होगी। अब आपको विचार करना है क्या करना है, आपकी इच्छा है। तो वेद पढ़ने से क्या होता है? देखो वेद के अध्ययन से हमको उसके अपने जीवन का लक्ष्य का पता लग जाता है, अपने लक्ष्य पाने का साधन भी बताता है वेद। जैसे गीता के अंदर हमारा लक्ष्य क्या है भगवान वो भी बताते हैं, और पाने का उपाय भी बताते हैं। ब्रह्मलोक अगर आपने शुक्ल मार्ग से जाना है तो उसके लिए कैसे जा सकते हैं, उपासना नंबर 1, 2, 3 भगवान ने बताया ना, यहाँ जाना, ये करना है। आपको कृष्ण मार्ग से स्वर्ग जाना है, इष्टपूर्त कर्म करते रहो, वहाँ पहुँच जाओगे। तो दोनों चीज़ें भगवान बताते हैं। तब से क्या होता है? तब से एनर्जी का संचय होता है। तब से जो है एनर्जी का संचय होता है। मनस्य इंद्रियानाम परमम तपः, मनस्य इंद्रियानाम एकाग्रम परम तपः। मन और इंद्रियों को एकाग्र करना जो है ये परम तप है। एकाग्र करना मतलब उनको संसार से हटाना। संसार से हटाने का मतलब शक्ति संचय होती है। आप चुप से बैठे रहो, कुछ भी नहीं करो, चेयर पर बैठे रहो सारा दिन, केवल संसार का चिंतन करते रहो, 8 घंटे में टायर्ड हो जाओगे। कुछ नहीं किया आपने, आप हिले तक नहीं। कितनी एनर्जी खर्च होती है खाली सोचने में, सोचने में, सोचने में। अगर हमने अपने मन को वहां से हटा लिया, इंद्रियों को हटा लिया, तो हमारा जो है शक्ति का संचय होता है। शक्ति का संचय होता है, इनर्जी संचय होता है। और यज्ञ देखो, अभी यज्ञ जो करते हैं ना हमको स्वर्ग प्राप्ति के लिए, ज्योतिष होम किया हमने, स्वर्ग प्राप्ति के लिए ज्योतिष होम किया, भगवान कहते हैं वो यज्ञ यज्ञो भाई विष्णु मेरे लिए करो, यज्ञो भाई विष्णु मेरे लिए ये कर्म करो। तो उससे क्या होगा? बोले मेरी प्राप्ति यहीं हो जाएगी, इस जीवन में ही हो जाएगी, हियर एंड नाउ। और दान, दान क्या है? दान अपना शेयर करो, किसका धन शेयर करो, धन का करो, समय का करो, श्रम का करो, जो भी आपके पास में दे सकते हो वो दो, दान करो। आप समष्टि के अंदर देखेंगे तो जो है यज्ञ दान जो है कंटिन्यूअस हो रहा है, तप यज्ञ दान कंटिन्यूअसली सारे कॉस्मोस में हो रहा है, समष्टि में। सूर्य अपनी जो है किरणें दे रहा है, ताप दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, किसका काम कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? भगवान के लिए कर रहा है। बादल, बादल जो इतनी बरसात देते हैं या इतना जो अभी स्नो होता है, आपने कभी सोचा है? हम तो एक दिन सोच रहे थे यहाँ पर वो स्नो हटाने वाला आता है तो हाथ से तो हटा ही नहीं सकता, गाड़ी से भी नहीं पूरा हटा सकता है, उसमें भी काफी ऊर्जा लगती है, समय लगता है। तो इतनी सी जगह साफ करने को एक मनुष्य को कितना समय लग जाता है? आप अपना ड्राइव अगर आप खुद करते होंगे तो आपको पता लगता होगा कि कितना समय लगता है और कितना कष्टकारी है। अब इतना सा, इतना भारी स्नो को भगवान वहां क्लाउड में रखे हुए हैं और उसको आराम से वायु से शिफ्ट कर देते हैं, हमसे एक बेलचा, उसको कहते हैं एक स्पून नहीं उठता है। हम 2 साल की 3 साल आगे की घटना कहते हैं तो हमारे वहां जो एक रस्सी वाला गेट है ना, तो रस्सी वाले गेट में वहाँ पर जो है बर्फ़ हो गई। अब वो काम करने वाली जो सवेरे आती हैं वो लेडीज होती हैं, इतना बर्फ़ है पांव घुस जाएगा, कैसे होगा साहब को? हम लगा ठीक है कल हम कर देंगे। हम वो लेके गए, हमने थोड़ा सा उसको साफ किया, दर्द हो गया। फिर हम सोचते थे कि भगवान कैसे करते हैं, सब जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, समदर्शी, सबको बराबर, सब सादा एक सर कर देते और कितनी आसानी से घुमा देते हैं, इधर से उधर ले जाते हैं, हवा से सब शिफ्ट हो रहा है, आराम से होता है। तो उस भगवान के लिए सब कर रहे हैं। आप देखो समष्टि के अंदर में सब भगवान के लिए हो रहा है, एवरीथिंग फॉर भगवान। एक मनुष्य को छोड़कर बाकी सब भगवान के लिए करते हैं, एक मनुष्य जो है वो अपने लिए करता है। और भगवान बार बार कहते हैं अरे समष्टि देखो, प्रकृति को देखो, सब दूसरों के लिए करती है, तुम भी करो। हम नहीं करते। पुष्पिका वाक। तो इस तरह हमारा आज 7वां अध्याय खत्म हुआ, 8वां अध्याय खत्म हुआ। अब हम 9वें अध्याय में अगले दिन प्रवेश करेंगे।
पुष्पिका वाक। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम 8वां अध्यायः।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।